नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय दो और श्लोक संख्या है 42। इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहं यथोदकै पार्थिव तैजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति। इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिक मियते गृहं यथोधकै पार्थिव तैजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति। इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिक मियते गृहं यथोधकै पार्थिव तैजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति। शब्दार्थ इदं इस शरीरम शरीर को पुरुषस्य बद्ध जीव का मोहजम अविद्या से उत्पन्न यथा जिस तरह पृथक भिन्न भौतिकम भौतिक ईयते देखा जाता है गृहम घर को यथा जिस तरह उदक है जल से पार्थिव पृथ्वी से तेजस है तथा अग्नि से जनहा बद्ध जीव कालेना काल द्वारा जातः उत्पन्न विकृतः रूपांतरित विनश्यति नष्ट हो जाता है। अनुवाद कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। जिस प्रकार एक गृह स्वामी अपने घर से पृथक होते हुए भी अपने घर को अपने से अभिन्न मानता है उसी प्रकार अज्ञानवश बद्ध जीव इस शरीर को आत्मा मान बैठता है। यदि भी शरीर आत्मा से वास्तव में भिन्न है यह शरीर पृथ्वी जल तथा अग्नि के अंशों के संयोग से प्राप्त होता है और जब वह कालक्रम में रूपांतरित हो जाते हैं तो शरीर विनष्ट हो जाता है। आत्मा को शरीर के इस सृजन तथा विलय में कुछ भी लेना देना नहीं रहता। तात्पर्य हम एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करते हैं ये शरीर हमारे मोह से जन्य है किंतु आत्माएं भौतिक बद्ध जीवन से पृथक विद्यमान है। यहां पर उदाहरण दिया गया है कि घर या मोटर कार उसके स्वामी से पृथक होती है किंतु बद्ध जीव आसक्ति के कारण उसे अपने से अभिन्न सोचता है। मोटर कार या घर वास्तव में भौतिक तत्वों से बना होता है। जब तक भौतिक तत्व सही ढंग से मिले रहते हैं तो मोटर कार या घर का अस्तित्व रहता है किंतु उनके विलग होते ही घर या मोटर कार भी ध्वस्त हो जाती है किंतु आत्मा तो सदैव जैसा का तैसा रहा आता है। हरे कृष्णा। तो मेरा बड़ा सौभाग्य कि मैं आप सबके समक्ष हूँ और विशेष रूप से रुक्मिणी कृष्ण वेदी प्रभु से इतना कुछ सीखा है। इसलिए जब हमारे टीचर्स सामने होते हैं तो क्या होता है हियरिंग मोड ऑन हो जाता है स्पीकिंग मोड ऑफ हो जाता है, लेकिन अभी चैलेंज यह है, हाँ बोलना है, स्पीकिंग मोड ऑफ है, तो अभी क्या करें? तो उसके लिए फिर हमारे टीचर्स हैं, उन्हीं की उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं, प्रभु जी आशीर्वाद दें कि मैं कुछ बोल सकूँ आप सबके दिव्य आनंद के लिए और अपनी शुद्धि के लिए। ऐसी किस ब्लेसिंग्स, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो कि हम वैसे तो रोज़मर्रा, मतलब रोज़मर्रा क्या, हमारी डे टू डे प्रीचिंग में भी हम बात करते हैं कि अगर देखा जाए जो सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि अपने ही अस्तित्व के बारे में अज्ञानता। जैसे कि मैथ्स में हम लोग जो सवाल किया करते थे, सॉल्व करते थे, अगर पहले स्टेप में ही अगर गलती हो जाए तो उसके बाद भले ही कितने मेटिकुलसली बड़े ही ध्यान के साथ हम लोग मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, सब्ट्रैक्शन इत्यादि करें, लेकिन उसका आंसर तो गलत ही निकलेगा, क्योंकि शुरुआत में गलती कर दी, ब्रैकेट खोला, बाहर माइनस था, अंदर के साइन चेंज नहीं किए, समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ कर दिया आपने, मैथ्स में जैसे होता है। तो पहले स्टेप में गलती हो गई, अब उसके बाद तो सब इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन सब लगा दिया अच्छे से, लॉग टेबल देख लिए, लेकिन आंसर तो गलत ही आएगा, क्योंकि पहले स्टेप में गलती हो गई। तो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, कि हमारा जो अस्तित्व है उसके ऊपर बार 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 बोला जाता है, क्योंकि ये ही कमजोर नर्व है हमारी। इसलिए प्रभुपाद जी जो है बार बार इसको बोला करते थे, देखो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो कभी कभी जो है ये भी ध्यान में आता है कि प्रभुपाद जी तो है महाभागवत है, तो हमें कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअली कुछ कुछ मेंटली स्टिमुलेटिंग कुछ बताएं तो और अच्छा लगे, थोड़ा और मजा आए पढ़ने में, सुनने में। नहीं, प्रभुपाद बार 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 इस बात को हाईलाइट करते हैं, नया व्यक्ति आता है उसको भी बताते हैं, सी वी आर टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं हमारी कमजोर नर्व क्या है, हमारी नर्व जो है कि कमजोरी वही है कि हमारे हमने अस्तित्व की जो भूल है उसके बाद सारी कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो गई है हमारी, सारी कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो गई। जैसे कि एक बार बहरेन में, और क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम लोग प्रशिक्षण भी वैसे मिलता है ना, बच्चा जैसे जब पैदा भी होता है तो पैदा होते ही उसको जो है शरीर का बोध कराया जाता है कि वो शरीर ही है। जब बच्चा बाहर आता है तो उसे कहते हैं कि देखो बेटा, मम्मा मम्मा ये पापा है, अले मेरा कुची कुची को, मेरा लड्डू, मेरा बर्फी। सो ही स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग, यही सब कुछ है, ये परिवार, मेरे माता पिता, फिर बड़ा होता है ये मेरी पत्नी, ये पड़ोसी, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये है, ये वो है, ये मेरा शुभचिंतक है, इसको मैं अपने साथ मिला लूँ, इसको मैं अलग कर दूँ, फिर यह वो इसी कैलकुलेशन में लग जाता है। लेकिन पहले स्टेप पे ही गलती होगी, आइडेंटिटी में ही गड़बड़ी होगी, अब उसके बाद जो भी करेगा वो गलत ही होगा। इसलिए सोशल रिफॉर्मेशन के नाम पे जो कुछ भी आज किया जाता है उसका कोई लाभ है नहीं। इसीलिए मॉरल एजुकेशन, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, गुड, वेरी गुड। लेकिन पहले स्टेप में जो है ना वहाँ मिस्टेक हो गई, आइडेंटिटी की ही मिस्टेक हो गई, तो अब उसके बाद बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल वाली मॉरल एजुकेशन ना वो काम करती नहीं फिर बाद में। जैसे समझाते रहता है, इतना समझाते बच्चों को, आज के बच्चे जो है ना, जैसा हमारा टाइम था, आज के बच्चे तो बहुत खराब हो गए, आप देखा बच्चों का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन आइडेंटिटी जो है हम ही उनकी गलत करते हैं, उसके बाद कहते हैं ये बच्चे अजीब बिहेव कर रहे हैं, देखिए बच्चे जो आजकल के ना बहुत खराब हो गए हैं, बहुत जमाना बहुत खराब हो गया, बहुत खराब जमाना हो गया। लेकिन उसके बीच कौन बोलते हैं, हम ही लोग तो बोलते हैं। ऐसे भरेन का एग्जाम्पल बोलने वाला था, तो भरेन में एक बार, भरेन में एक बार क्वेश्चन पेपर आया था, तो उसमें क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय गट्स, गट्स आते ना दम, इतने में दम दम गट्स, तो ये सवाल आया, व्हाट डू यू मीन बाय गट्स। तो कईयों ने अलग अलग जवाब दिए इसके, तो एक ने आंसर दिया ANSWER, पूरा पेज खाली छोड़ा, नीचे लिखा दिस इज कॉल्ड गट्स, नंबर दे के दिखा गट्स, उसको 10 में से 10 मिले। क्या आंसर लिखा, एक अलग सा आंसर, पूरा पेज खाली, नीचे लिखा दिस इज कॉल्ड गट्स। तो गलत जवाब दो तो पूरे नंबर मिलते हैं अस्तित्व के बारे में, ठीक है। इस तरह से हम जयपता का महाराष्ट्र थे, वो बंगाल में जब उन्होंने नई नई प्रीचिंग शुरू की थी, तो वहां ना प्रिंटिंग प्रेस में गए थे, तो प्रिंटिंग प्रेस में वहां पर ना क्वेश्चन पेपर छप रहे थे एक स्कूल के, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर उठा लिया, साथ में टीचर भी खड़ी थी, तो उसमें पहला क्वेश्चन था, तुम्हार परिचय की, हु आर यू, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तुम्हारा ने कहा टीचर से कि अच्छा अगर मैं इसका जवाब दूं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, आई बिलोंग टू कृष्णा, आई एम कृष्णा सर्वेंट, आप मुझे कितने नंबर देंगे, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। स्वामी जी ऐसा बकवास आंसर, जीरो नंबर, ये भी आंसर हुआ, अजीब वगरीब आंसर है। तो महाराज ने कहा अच्छा तो इसका क्या आंसर आप एक्सपेक्ट करती हैं? नहीं वो कुछ भी लिखे, लिख दे कि मैं भारतीय हूँ, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं आगे जाके IAS ऑफिसर बनूंगा, इस तरह करके वो अपने बारे में परिचय दे ना, अपने बारे में परिचय देगा उसको पूरे नंबर मिलेंगे। तो सही जवाब दो जीरो नंबर। तुम्हारा परिचय की जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीरो नंबर गलत जवाब। तो बहुत ही जगह पे हमको ये ट्रेनिंग दी जाती है शुरू से ही, आइडेंटिटी की ही प्रॉब्लम कर दो, बस आइडेंटिटी की प्रॉब्लम कर दो बस, उसके बाद फिर जो होगा फिर तो वो गलत सलत ही होना है उसके बाद। तो यहां पर जब अज्ञानता में व्यक्ति होता है तो वो जीवन ऐसे जीता है कि शरीर से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके साथ जो हो रहा है बस उसी को सब कुछ मानता है वो। जैसे लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं ना, तो मूवी में जो चल रहा है उसी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें कॉमेडी का सीन चल रहा है तो ये भी हंसते हैं, अगर उसमें सैड सीन चल रहा है तो आंखों में यहां भी आंसू आते हैं कि यार हीरो मर गया, पहले हाफ में हीरो मर गया, बेचारा डायलॉग भी पूरे नहीं कर पाया था, मर गया, सैड तो क्या आंखों में आंसू आ रहे हैं, पॉपकॉर्न भी चल रहा है आंसू भी आ रहे हैं, दोनों चल रहे हैं साथ में। और फिर मान लो कोई जो है अगर एक्शन वाली बात आ गई तो जो है मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, अरे अरे यहां से मारना, अरे बिकॉज दे आइडेंटिफाई विद द मूवी है ना। पर एक्चुअली मूवी क्या है, मूवी जो है प्रोजेक्टर से एक लाइट है जो कि यहां पर हरे पीले लाल नीले ये जो है बस कलर्स हैं जो कि फेंक रही है प्रोजेक्टर के ऊपर, लेकिन क्योंकि ये जीव जो कि देख रहा है इस मूवी को वो इस मूवी से आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इसीलिए इसके साथ जैसी जैसी मूवी चल रही है वैसे वैसे इसके भी इमोशनल अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, वो रोता भी है, वो हंसता भी है, वो चिल्लाता भी है, वो कॉमेडी भी मारता है, क्योंकि उसके साथ आइडेंटिफाई, जबकि उसका कुछ लेना देना नहीं है क्या होता, सिर्फ पिक्सल्स हैं लाल पीले नीले जो है पिक्सल्स हैं जो कि इधर उधर मूव कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है देखा जाए तो क्योंकि वो इसे आइडेंटिफाई कर रहा है बस, तो ये मान बैठा है। और एक्चुअली हम लोग भी जगत में देखें ये आकर्षण जो है संसार के प्रति इसीलिए है क्योंकि जो भी ये रोशनी जो आंखों में प्रवेश कर रही है हम इसको सच मानते हैं जो हो रहा है ना। अगर कोई बहुत सुंदर स्त्री को देखता है तो वास्तव में ये लाइट है जो कि आंखों में प्रवेश कर रही है लाल पीले नीले रंग की और हम इसको सच मानते हैं, ये सच है। तो इसीलिए जो है इस आइडेंटिफिकेशन में व्यक्ति फंस जाता है, रादर मिस आइडेंटिफिकेशन में फंस जाता है वो। जब सृष्टि की रचना तो नहीं सतयुग के समय की बात है, तो इंद्र और एक राक्षस विलोचन, तो विलोचन और इंद्र ये दोनों ब्रह्मा जी के पास गए थे, तो इन्होंने पूछा ब्रह्मा जी से कि अगर दुनिया संसार का में अगर सुखी रहना हो, संसार में अगर सुखी रहना हो तो कैसे रहा जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मैं तुमको तब बता पाऊंगा अगर तुम 32 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो फिर मैं तुमको बताऊंगा तब तुम समझ पाओगे। अच्छा, तो इंद्र और विरोचन दोनों के दोनों तपस्या करने के लिए चले गए, तपस्या कर रहे हैं 32 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और उसके बाद वापस आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास है तो उनसे पूछा अब हमें बताइए किस तरह से संसार में रह के हम खुश रह सकते हैं। जाके ना जल में देखो, जो तुम देखोगे ना तो यदि तुमने अपने खुद के दर्शन कर लिए तो तुमको जो है किस प्रकार से संसार में सुखी रहा जाए उसकी कुंजी मिल जाएगी। तो वो दोनों के दोनों गए, दोनों ने देखा पानी में परछाई देखी अपनी, ने कहा हमको तो सिवाय नाखून और बालों के नजर ही नहीं आया कुछ, तो हम वही हैं क्या? कहते हैं अच्छा तो फिर ना अपने फिर ये अपने बाल और अपने नाखून काट लो फिर देखो फिर तुम्हें नजर आए अगर तो तुम वही हो, और जो तुम देखोगे ना वो अजर है अमर है। अच्छा, तो दोनों अपने नाखून काटे बाल वारा हटाए और गए फिर से देखने के लिए गए। अरे हाँ इतने अच्छे लग रहे हैं दोनों। तो ब्रह्मा जी ने कहा देख लिया उसको जो कि अजर है अमर है? हाँ हाँ हाँ। तो विरोचन भी अपने लोग चले गए और इंद्र भी अपने लोग चले गए। तो विरोचन ने सबको बताना शुरू कर दिया, मुझको पता लग गया है वास्तव में हम कौन है, हम तो शरीर है, यही तो है हम और क्या। अब ये इस बात का साक्षात्कार होने के बाद संसार को भोगो इसी तरह से संसार में खुश रह सकते हैं। इंद्र भी जो है अपने लोक की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने सोचा है ये ब्रह्मा जी ने क्या ट्यूशन दी हमको, हमको ये बोला कि वो जो तुमको दिख रहा है ना वो अजर है अमर है, वो ही हो तुम, ये तुमने जान लिया तो तुम सुखी रहोगे। लेकिन ये शरीर तो अजर अमर है ही नहीं, ये तो छोड़ना पड़ता है, ये तो बुढ़ापा भी आता है इसके अंदर, ये ना कोई ट्यूशन में रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं हुई मेरी, तो रस्ते से वापस आए। ब्रह्मा जी डाउट है, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ऐसा करो तुम 32 साल और ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो, ये जानने के बाद तुम हमेशा खुश रहोगे। अच्छा, तो फिर से 32 साल के ब्रह्मचर्य का पालन किया इंद्र ने और फिर वापस आए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुम सपने में देखते हो ना, जिसको सपने का बोध हो रहा है तुम वो हो, जिसको सपने का बोध हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू ब्रह्मा जी, हो गए ट्यूशन पूरी, वापस अपने लोक की ओर। लेकिन अब जब वापस आ रहे थे फिर इंद्र ने सोचा कि सपने में असल में देख क्या रहा हूं, सपने में मैं जिस चीज को देखता हूं है ना वो एक अलग दुनिया है, और जब मैं उस अलग दुनिया में होता हूं तो इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता हूं जिसे मैं हूं अभी, तो इसमें से सपना है कौन सा है, ये तो कंफ्यूजन है अभी भी कि ये सपना है कि वो सपना है, वो रात वाला सपना है या फिर उसमें भी ये वाला सपना देख रहा हूं जिसमें मैं अभी हूं। तो यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो कंफ्यूजन है अभी। वापस ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी डाउट है, फिर डाउट बताया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है 32 साल का ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर वापस आना, फिर बताऊंगा तुम्हें। वो फिर से आए, उन्होंने कहा कि जब तुम्हें कोई सपना ना आए ना तो जिसका बोध तुमको हो वो हो तुम। अच्छा नहीं, लेकिन हाँ फिर आ गए 32 साल के बाद तो, लेकिन उन्होंने इस बात पे जब फिर से विचार किया कि जो गहरे सपने में जिस जो बोध कर रहा है वो हो तुम, जिसमें कोई सपना नहीं है, लेकिन इसके अंदर तो ना सब कुछ शून्य है, ये तो जैसे ही जैसे कि मैंने मानो अपना ही मतलब आत्महत्या कर दी हो, इट्स लाइक स्पिरिचुअल एनाइलेशन। अब ब्रह्मा जी ये कंफ्यूजन है, ब्रह्मा जी का ठीक है ओके लास्ट 5 साल का ब्रह्मचर्य और कर लो फिर बता दूंगा तुम्हें। तो फिर जब इंद्र जब आए तो फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर के अंदर हम रहते हैं, और फिर शरीर और आत्मा का पूरा ज्ञान है। तो इंद्र को जाके इस बात का बोध हुआ, कहा यदि तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, अपनी आइडेंटिटी को जान लोगे, अपने अस्तित्व को जान लोगे, तो ही तुम वास्तव में संसार में सुखी रह सकते हो, नहीं तो यहां पर सारी हरकतें जो है ना पागल पागलों जैसी ही है। सर में जवाहरलाल नेहरू एक बार गए थे आगरा के पागल खाने में, जवाहरलाल नेहरू, तो वहां पर जो है कई सारे पागल थे, ऊपटांग हरकतें कर रहे थे, तो एक पागल था वो ना शांति से गंभीरता से बैठा हुआ था और ना सब पागलों को देख के ना दुखी हो रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये सेफ लग रहा है थोड़ा, ये अटैक तो नहीं करेगा ना, डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं ये शांत वाला है, ये आक्रमण नहीं करता। अच्छा, तो जवाहरलाल नेहरू गए उसके पास, तो हाय हेलो की उसके बाद नमस्कार हुआ। अच्छा, तो जवाहरलाल नेहरू कहा तो बताया मैं आपका नाम जान सकता हूँ प्लीज, कहते हैं पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मेरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। ये सुनते ही वो पागल ऐसे हंसा, जोर जोर से हंसा, हंसने लगा, हंस हंस के उसने पेट पकड़ लिया उसने। जवाहरलाल नेहरू सोचने लगे कि मतलब हुआ क्या, मैंने ये तो बताया मैं जवाहरलाल नेहरू, मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूं। कहते तुम इस देश के प्राइम मिनिस्टर हो, पता है 5 साल पहले मैं जब इस पागल खाने में आया था ना मैं भी यही बोलता था, इन्होंने मुझे अंदर डाल दिया, अब तेरी बारी है। तो हम लोग जो है इसी तरह से यहां घूम रहे हैं, कुछ और समझ बैठे हैं खुद को, जो कि है नहीं। जैसे किसी को भूत चढ़ जाता है ना तो वो ना किसी और व्यक्ति से आइडेंटिफाई करता है। मुझे एक व्यक्ति, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक लेडी थी, उसका नाम था सुषमा। तो ना उसको अक्सर भूत चढ़ता था, या साइकोलॉजिस्ट बोलते थे ये स्प्लिट पर्सनैलिटी है, कि ना वो बीच बीच में अपने आप को ना एक व्यक्ति मानती थी जिसका नाम सलीम है, और फिर उसी की आवाज से बोलती थी वो, सलीम मैं कौन हो तुम लोग, यहां कैसे ले आए मेरे को, अजीब अजीब जगह है, मेरे को जाना है, मेरे को मक्का जाना है, मेरे को मक्का। तो वो ऐसे वो बीच में जब वापस आती थी फिर सूक्ष्म बन जाती थी, फिर रोटियां बेल रही है परिवार से बेल रही है, बीच में शरीफ फिर बन जाती थी। ये किस जगह ले मेरे को, मेरे को समय मैं सलीम हूँ, मेरा नाम सलीम है, मेरे को मक्का जाना है, मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो। लोग कहते हैं अजीबो गरीब हरकत है। तो इस संसार में हमारी ना बिल्कुल ऐसा स्प्लिट पर्सनैलिटी है, बिल्कुल स्प्लिट पर्सनैलिटी है। आनंद हम वो चाहते हैं जो कि आत्मा का, जो हमेशा चले, हमेशा रहे, लेकिन आइडेंटिफाई जो है इस शरीर के साथ ही करते हैं। इसलिए जब एक जब झुर्री आती है ना, तो उसके बाद व्यक्ति ये नहीं सोचता कि यार ये शरीर मैं नहीं हूं, वो सोचता है यार पॉन्ड्स एज मिरेकल लगाना चाहिए। एट दैट टाइम आत्मा का बोध नहीं होता, उस वक्त भी शरीर और गहराई, अरे माया यार शरीर माई हुई, शरीर खराब हो रहा है यार, ऐसे कैसे, मैं तो शरीर हूं, मैं खराब हो रहा हूं। तो इच्छाएं तो वही है कि ना वो नित्य सुख मिले, मैं हमेशा जवान रहना चाहता हूं, मैं हमेशा आई शुड स्टे यंग ना फॉर एवर। इसलिए एड भी ऐसी आती स्टे यंग फॉर एवर, तो लोग उससे फिर आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ ये स्टे यंग फॉर एवर, शरीर से मैं, क्योंकि मैं तो शरीर ही हूं तो शरीर हमेशा जवान रहेगा ना, उसके लिए मेरे को पॉन्ड्स एज मेडिकल लगाना पड़ेगा, या फिर ओले या फिर लैक्मे कोई ना कोई सनस्क्रीन लोशन लगाएंगे, तो उससे क्या है मैं हमेशा यंग रहूंगा या रहूंगी। जैसे कि अवंती ब्राह्मण जो है बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं कि संसार में वास्तव में दुखों का कारण क्या है। तो कहते हैं कि ये जो देवी देवता है क्या ये दुखों का कारण है, नहीं, ये भला कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ इंद्रियों और इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाली वस्तु ही कर सकते हैं, और मैं तो ये इंद्रियां हुई नहीं, मैं तो ये शरीर हुई नहीं, तो इसीलिए ये जो देवी देवता है ये तो मेरे सुख का कारण नहीं है। फिर मेरे सुख और दुख का क्या कारण है, मेरे सुख और दुख का कारण ये प्लैनेट्स है क्या, ये शनि है ना, ये केतु, ये राहु, लोग ऐसा रहता है ना बेटा तुम्हारी ना 7:30 चल रही है, बहुत बुरा समय तुम्हारा, बहुत बुरा समय, केतु की 7:30 है, शरीर खराब रहेगा, पत्नी से तलाक हो जाएगा, तुम्हारा तुम्हारा तो बेड़ा गर्क होना है। देखो इसके लिए है ओम केतवाय नमः, रोज है जब क्या करो ओम को, ओम केतवाय नमः, ओम केतवाय नमः, ओम केतवाय नमः। आपका तो बहुत खराब समय चल रहा है, आपका तो शनि चल रहा है, इतना बुरा समय है कि अगर आप जलते हुए बल्ब को छू दोगे ना वो फ्यूज हो जाएगा, बहुत बुरा समय चल रहा है देखो आपका तो, ठीक है। तो आप क्या है ये लोहे की अंगूठी पहना करो, उससे क्या है आपके कष्ट दूर होंगे। ऐसे एक बार एक व्यक्ति गया एस्ट्रोलॉजर के पास, तो उसने कहा भाई आपके हाथ में लिखा है आपके जीवन में 14 स्त्रियां हैं। अरे अरे क्या बोल रहे हो यार, और बताओ और बताओ। कह रहा ये 14 स्त्रियां हाँ जी पक्का कंफर्म्ड है, एक पत्नी है, 13 बेटियां हैं। तो लोग जो है एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ कि ना वो जो है हमारा भाग्य बदल देगा। वो बोला बेचारा क्या भाग्य बदलेगा, वो खुद अपने भाग्य को रो रहा है, वो खुद अंगूठियां पहनता है, गोमेद पहनेगा, पुखराज पहनेगा, नीलम पहनेगा, पन्ना पहनेगा, लेकिन कर्मों का पन्ना ऐसे नहीं बदलता। कर्मों के पन्ने में जो है संसार के में जो है हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये अगेन अगर देखा जाए ये भला क्या करेंगे, ये तो एक्सटर्नली ये एक्चुअली जो प्लैनेट्स होते हैं ना, प्लैनेट्स तो हमारी एक कोडिंग है कि कार्मिक कोडिंग है हमारी कि भाई ये इस प्रकार से आपके साथ होगा, दे आर नॉट द कॉज, ये तो सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपको भोगना पड़ेगा। जैसे कि अगर जो ये जो श्रीमद् भागवतम है ये एक्चुअली हिंदी लैंग्वेज हमको नहीं दे रही, हिंदी लैंग्वेज के थ्रू हम लोग इस ज्ञान को ले रहे हैं। तो प्लैनेट्स हैं बिल्कुल उसी तरह से हैं, तो प्लैनेट्स भी जो है हमारे सुखों और दुखों के कारण नहीं है, तो बोला और क्या सुखों और दुखों का कारण है। कहता है काल, काल चक्र मेरे दुखों का कारण है क्या, नहीं काल चक्र भी दुखों का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि काल तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है और मैं भी आत्मा हूं, मैं भी आध्यात्मिक शक्ति हूं, आध्यात्मिक शक्ति भला दूसरी आध्यात्मिक शक्ति को दुख क्यों देगी। तो काल तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, भला आग की लौ क्या दूसरी आग की लौ को जलाती है, नहीं। क्या ठंड क्या बर्फ को पिघलाती है, नहीं। तो काल चक्र जो है वो मेरे दुखों का कारण है, नहीं वो भी नहीं है। फिर बाद में अवंती ब्राह्मण कहते हैं कि वास्तव में ये मन जो कि मिथ्य अहंकार के द्वारा ग्रसित है ये दुखों का कारण है। तो ये जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है ये दुखों का कारण है। तो इससे कभी कभी ना भक्तों में भी चर्चा हो जाती है प्रभु जी आत्मा कंटेमिनेट होती है कि नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग हम ऐसे पढ़ते हैं भागवतम में या भगवद गीता में कि आत्मा जो है ये सबसे पृथक है, लेकिन कंडीशन सोल, ऐसे भी हम टर्म्स पढ़ते हैं कंडीशन सोल, ये जो सोल है आत्मा, बद्ध आत्मा। अब ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है भाई प्रभु जी, अब ये आत्मा कंडीशन होती है या नहीं होती है? एक तरफ आता है आत्मा सबसे पृथक है, आत्मा है सबसे अलग है, इसको कुछ लेना देना नहीं इससे। तो इसको कैसे रिजॉल्व करें इस कॉन्फ्लिक्ट को, कि आत्मा कंडीशन होती है नहीं होती, बद्ध आत्मा। तो असल में आत्मा जो है ना वो दूषित नहीं होती, असल में जो जो भौतिक प्रकृति है उसके द्वारा जो चेतना पे आवरण है, चेतना जो कि वास्तव में आत्मा का, आत्मा की एक प्रकृति है, उसका एक नेचर है, वो जो नेचर जो जो कवर्ड पार्ट है ना उस चेतना का, जब आत्मा इससे आइडेंटिफाई करती है तो ये जो मिस आइडेंटिफिकेशन है ये दुखों का भोग कर रहा है। असल में आत्मा जो है दुखों का भोग नहीं करती, लेकिन ये जो मिस आइडेंटिफिकेशन है चेतना का, जो कि प्रकृति के तीन गुणों से कवर हो गया है ना, इसे कहते हैं अनावृति शब्दांत, यानी कि ये जो कवरिंग है मिथ्या अहंकार की, अज्ञानता की अनावृति, जब ये हट जाएगी तो हम लोग जान लेंगे वास्तव में हम लोग कौन है। इसलिए आत्मा जो है वास्तव में सबसे पृथक है। तो ये कहें, इसलिए प्रभुपाद जी एक रिपोर्ट में लिख रहे हैं भगवद गीता के, द स्पिरिट सोल इज कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस, क्योंकि आत्मा और चेतना एक होते ही एक भी है और अलग अलग भी है, अचिंत भेदा भेद है। तो अगर माने कि आत्मा जो है चेतना से अलग है तो आत्मा को कुछ नहीं होता कभी भी, लेकिन ये माने कि आत्मा चेतना से अभिन्न है तो चेतना तो ऑफकोर्स आत्मा इस तरह से बद्ध होती है। तो ये मिस आइडेंटिफिकेशन जो है फॉल्स ईगो के कारण, ये जो मिथ्य अहंकार है, इसी से ही सबको पोषण मिलता है, इसी से सबको पोषण मिलता है। तो इसीलिए जो जो रूट कॉज है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। एक बार श्री प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में थे अपने भक्तों के साथ, तो चलते चलते क्या हुआ कि ना एक 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 बर्फ की सिल्ली आई, तो उसमें ना अपनी छड़ी लेके ना उसमें पहले खड़े हो गए, उसमें ना छड़ी से ना उसको मारने लगे और कहने लगे माया माया माया। अब शिष्यों के लिए बड़ा सोच रहे थे ये प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बार बार बर्फ की सिल्ली के ऊपर ये छड़ी मार के कह रहे माया माया माया। तो प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा, तो प्रभुपाद जी ने कहा जैसे अब ये जो पानी, ये जल है ना, जो पानी होता है, इसका स्वाभाविक, इसका जो स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है बहना, लेकिन क्योंकि ये ठंड के इस वातावरण में आ गया इसलिए ये ना बर्फीला हो गया, इसलिए अपनी जो तरलता का स्वभाव है ये ढक गया है इसका। इसी तरह से आत्मा जो भौतिक जगत में आती है तो ये बड़ा ना अननेचुरल एनवायरनमेंट है आत्मा के लिए, ये भौतिक जगत बड़ी अननेचुरल जगह है आत्मा के लिए, क्योंकि यहां पर सब कुछ उल्टा है उसके स्वभाव का। तो यहां पर आकर बजाय की सेवा करने के भोग की इच्छा हो जाती है कि मैं भोग करूं, लेट मी एंजॉय, पर उसका वास्तविक जो उसका मूल स्वभाव ही है कि सेवा करना, तो सर दैट इज इट। लेकिन यहां पर ये जो वातावरण है, भौतिक वातावरण, क्योंकि इससे आइडेंटिफाई कर रही है, इस मूवी को देख रही है वो अपने आसपास की, इससे आइडेंटिफाई करने के कारण उसके साथ ऐसा हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है वास्तव में जो पूरा जगत है ना, ये एक्चुअली महाविष्णु जी का एक सपना है, महाविष्णु जी के स्वप्न की कृति है जो संसार है। इस सपने के अंदर हम लोग अपने अपने सपने सोचे हुए हैं हम लोगों ने, जिसको हम सच मानते हैं। अब जो सपना होता है ना, भले ही वो सच नहीं होता हाँ, लेकिन वो टेम्परेरी होता है और उसके अनुभव जो है सच्चे होते हैं। ऐसे सपने में अगर कोई व्यक्ति बहुत ही से कोई हॉरर सीन देख लेता है तो वास्तव जब उठता है पसीना आया होता उसे, क्यों? क्योंकि उसने उस सपने के साथ आइडेंटिफाई किया। इसीलिए तो इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वास्तव में वो एक सपना है, क्यों? क्योंकि भौतिक जगत ही महाविष्णु जी का सपना है, ये स्वप्न की कृति है। तो यहां दिन का सपना है या फिर रात का सपना है, इसलिए इस सपने में जब हम आते हैं तो हम रात के सपने को भूल जाते हैं, और जब रात के सपने में जब जी रहे होते हैं से आए मैं कहीं किसी के साथ घूम रहा हूं तो मैं इस सपने को भूल जाता हूं, लेकिन है दोनों के दोनों सपने ही सपने। सपने तो अपने ही होते हैं, लोग ये समझते हैं, इसीलिए जो है वो एक झूठे जीवन में जीते हैं, लेकिन सपने कभी भी अपने नहीं होते, वो सिर्फ एक छलावा होता है और कुछ भी नहीं। तो क्योंकि हम इस सपने के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसीलिए जो है हम संसार में बनते चले जाते हैं। क्योंकि हम जो है एक ऐसी चीज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि हम है ही नहीं, ये सपना है वास्तव में। तो इस समय हम सब जो है एक सपने में है। आपको कह सकता है प्रभु जी यानी कि भागवतम क्लास जो हो रही है ये भी सपना है, सपने का कोई अर्थ तो होता नहीं, तो यानी कि इस भागवतम क्लास का भी कोई अर्थ नहीं है, है कि नहीं? क्या अर्थ हुआ भाई? सपना है ना, सपने का तो कोई अर्थ नहीं होता। ये तो हमने प्रवचन में ये तो सुना अभी तक हमने। तो ये भागवतम क्लास क्या हो रही है? यहाँ अभी अभी इससे पहले कीर्तन हो रहा था, ये सब भी एक सपना ही है। सपना तो सारा निरर्थक है, तो इसका मतलब ये भी सब निरर्थक ही है ना? नहीं, ये निरर्थक नहीं है, क्योंकि ये जो है सपना नहीं है, ये अलार्म क्लॉक है। जब हम गहरे सपने में होते हैं ना, और जैसे ही जैसे यहाँ भक्त लोग उठते हैं, ब्रह्मचारी उठते हैं 3:30 बजे, तो 3:30 बजे का अलार्म लगाते हैं, तो अलार्म ना फिर बजता है बीच में टिटिटिटिंग, तो ना अलार्म बजता है। तो होता क्या है कि हम सपने में होते हैं, ऐसे मैं एक सपने में हूँ और मैं सपने में मैं पेरिस में एक किसी के साथ जो है मैं घूम रहा हूँ और मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो तभी जो है जब 3:30 बज जाते हैं, है ना, तो क्या मैं घूम रहा हूँ, मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ किसी के साथ, लेकिन ना बीच में आवाज आ रही है टिटिटिटिंग, सपना में चल रहा है। मैं एफिल टावर को देख रहा हूँ, लेकिन एफिल टावर से आवाज आ रही है टिटिटिटिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इतने एक खूबसूरत व्यक्ति के साथ में हूँ यहाँ पर पेरिस में, और ये एफिल टावर से जो है इस तरह की आवाज आ रही है टिटिटिटिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कुछ गड़बड़ है, ये सपने में ये वो सपना नहीं है जैसा मैं चाह रहा हूँ, ये सपने में के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ ये कुछ जो है इसके अंदर मिलावट हो गई है। तो होता क्या, धीरे धीरे ना वो जो टिटिटिटिंग वो कॉन्स्टेंटली चली जा रही है। तो उसके कारण क्या होता है कि ना इस जो सपना है ना, वो सपना जो है ना कमजोर होना शुरू हो जाता है, अल्टीमेटली वो उठाता है हरि बोल प्रभु उठो ना तब से बज रहा है वो, हाँ दिस इज रियलिटी एक्चुअली। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं ये वही है टिटिटिटिंग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, वही सुन रहे हैं। लेकिन साथ में लगता है प्रभु जी अब ये आज हम इस्कॉन जाते हैं ना, भागवतम क्लास में सुनते हैं, गीता में सुनते हैं, हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, लेकिन साथ में क्या एक सपने की दुनिया भी बाहर भी है। जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं फिर वही सपना शुरू हो जाता है ना, वही ऑटो वाला ना, फिर वही बार्गेनिंग करना, वही जो है अच्छे कपड़े खरीदना है ना, वही शॉपिंग करना, वही मॉल से घूमना, फिर सपने में खो जाते हैं। लेकिन फिर जब भक्तों के साथ आते हैं फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बीच का ना एक फेज आता है जिसमें सपना भी चल रहा है और टिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि जुड़े रहेंगे, तो ये जो है सपना है ना, हम इससे अलग हो पाएंगे। इस सपने के साथ जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं है ना, इस सपने से हम लोग अपने आप को अलग कर पाएंगे, नहीं तो इसी सपने में जीते रहेंगे। और सपने में मिलने वाली जो खुशी होती है ना, वो बड़ी टेम्परेरी सी होती है और वास्तविक खुशी नहीं है। अगर वो देखिए भी सपने में कोई कितना खुश हो जाएगा, कुछ खा लिया, कहीं सो लिए, बस उसके बाद। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखें, वन कैन डू सो मच, कितना कुछ है। और सपने के अंदर ना हमारी स्वेच्छा नहीं होती, सपने के अंदर जैसा सपना चलना है ना वो सपना चलेगा, उसी तरह से ये संसार जैसा चल रहा है उस हिसाब से हमें चलते रहना पड़ता है। सपने के अंदर स्वेच्छा नहीं होती, मैं ना वैसा वाला सपना देखू, मैं ना वैसा वाला सपना देखू, ऐसा नहीं होता। सपने के अंदर कोई स्वेच्छा नहीं होती, लेकिन जहां पर वास्तविक जीवन में यहां स्वेच्छा होती, उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में वहां पर स्वेच्छा है, वहां पर जो है आनंद है, वास्तविक आनंद है। लेकिन उसके लिए हमें इस अलार्म क्लॉक के साथ जुड़ना पड़ता है। लेकिन अलार्म क्लॉक भी कौन इंस्टॉल करता है लाइफ में? ये अलार्म क्लॉक भक्त लोग इंस्टॉल करते हैं। तो हमें दोनों चाहिए, हरिनाम भी चाहिए, ये अलार्म क्लॉक भी चाहिए, और साथ में एक भक्त भी चाहिए जो कि हिलाए, हरि बोल प्रभु, गेट अप प्रभु, मंगल आरती। हमें दोनों चाहिए, तो हमें भक्त भी चाहिए जो अलार्म क्लॉक को इंस्टॉल करें, क्योंकि हमारा क्या अलार्म क्लॉक के साथ भी जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। हरिनाम से जुड़ना बड़ा मुश्किल है, चार नियमों से जुड़ना कठिन है, लेकिन जब भक्तों के साथ होते हैं ना, तो भक्त लोग जो हैं इसको और इफेक्टिव बना देते हैं वास्तव में। तो इसीलिए डिवोटीज होना बड़ा जरूरी है। दे आर द वन हु विल वेक अस अप, یہی ہم کو اٹھانے والے ہیں کیونکہ یہ اٹھے ہوئے ہیں اسی لیے. اور نہیں بھی اٹھے ہوتے نا تو کیا ایک دوسرے کو دھکا دے کے اٹھاتے تھے, ارے بول پربھو اٹھو نا, ارے تم تو پہلے اٹھو نا. لیکن یہ دونوں لگے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ تو کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. سو اگر یہاں تک کہ اگر کوئی بھکت اگر پارشلی بدھ اوستھا میں بھی ہے اسٹل ہی سو ہیلپ فل کیونکہ بھکت ہے. تو بدھ اوستھا میں بھی بھلے ہی ہو بھکت ہاں لیکن اسٹل ہی کین بی ہیلپ فل. اٹ از ناٹ دیٹ کہ اونلی لبریٹڈ سولز کین ہیلپ اس, جتنے بھی بھکت ہیں. اگر ایک سنیاسی کے ساتھ ایک نیو بھکتا بھی جا رہا ہے نا اگر ٹرین میں, سو ہی از گیونگ ہز ایسوسیشن ٹو سنیاسی. سنیاسی ول آلویز وہ بھی کانشیس رہے گا مجھے نا صحیح سے بیہیو کرنا چاہیے, میرے ساتھ یہ نیو بھکتا ہے بھلے دو مہینہ پرانا ہے لیکن. سو ہی از ایکچولی گیونگ پروٹیکشن ٹو ایون سنیاسی. آف کورس اس کو زیادہ فائدہ ملے گا, سنیاسی کا سنگ ملے گا اسے, بھکتا شدھ بھکتا سنگ ملے گا. پر ہر ایک بھکت کا جو ہے اس لیے مہتو بہت زیادہ ہے بیکاز یہ ہی الارم کلاک لے کے آتے ہیں ہمارے جیون میں. جیسے ایک بار ایک ایک ویکتی تھا بیک ٹو ورلڈ میگزین میں آیا تھا, ایک سیشن تھا ہاؤ آئی کیم ٹو کرشنا کانشیسنیس. تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ اسٹوری تھی کہ نا وہ ویکتی نا ٹرین سے اتر رہا تھا تو اس کا اسٹیشن آ گیا تھا تو اوپر سے اٹیچی نکالتے نکالتے جو ہے اٹیچی سلپ ہو گئی اور اس کے سر پہ گری. اب سر پہ گری نا اس کی یاداشت ہو گئی, یاداشت ہو گئی تو میں کون ہوں, میں کون ہوں, یہ کہاں آ گیا, میں کون ہوں میں. اب باہر جو ہے سامان لے کے اتر تو گیا, کون ہوں میں. تو تبھی جو ہے بھکتا وہاں سے گیتا ڈسٹریبیوشن کرتا ہے ریلوے اسٹیشن میں, کہتا ہے بھگوت گیتا پڑھیے جانیے کہ آپ کون ہیں, بھگوت گیتا پڑھیے جانیے کہ آپ کون ہیں. ارے ارے ایک منٹ بھائی صاحب, کیا بولا ابھی آپ نے؟ میں نے بولا بھگوت گیتا پڑھیے جانیے کہ آپ کون ہیں. اچھا میں یہی تو جانا چاہتا ہوں میں کون ہوں, میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں, مطلب یہ کون سی جگہ ہے, میں ہوں کون. بھکت نے دیکھا ایسی آتم ساکشاتکار کے لیے جگیاسا. آج تک ایسا دیکھا نہیں میں نے. لوگ سکھ شانتی کی بات تو کرتے ہیں لیکن ایسی جگیاسا میں ہوں کون, مجھے بتاؤ نا میں کون ہوں. ایسا انکریڈبل, مطلب بھکت بھی جوش میں آ گیا. بھکت نے رکھی گیتا اندر, سکس ڈے سیشن کا کریش کورس کرا دیا اسے. اچھا یس, تو آپ شریر نہیں ہیں, آپ آتما ہیں, آپ کرشن کے نتیہ داس ہیں. یہ ہوا, پتہ نہیں میں کیسے بھول گیا. تو کیا ہوا, اس کو پتا ہی نہیں کہاں جانا ہے. تو بھکت نے کہا ہمارے ساتھ مندر چلو, کوئی دقت نہیں. بن گیا, مندر جوائن کر لیا, مندر جوائن کر لیا, مندر میں رہنا شروع کر دیا, مندر میں سیوا بھی شروع ہو گئی, مندر میں شروع سیوا شروع ہو گئی, ہیڈ شیو شکھا یہ وہ دھوتی کرتا وہی چل رہا ہے. تو کچھ مہینے ایسے ہی بیت گئے. تو ایک دن جو ہے کچن میں سیوا کرتے کرتے پرات سر پہ گری. اب جب پرات سر پہ گری تو نا پھر جب اب اس نے جب شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا یار, پھر وہی سوال میں کون ہوں, یہ کیا ہو گیا, کیا ہے, کہاں گیا, کون سی جگہ ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ بھائی صاحب یہ میں کہاں گیا, یہ کون ہوں میں. تو ڈیوٹی نے کہا اس کو تو سب کچھ پتا ہے, یہ دوبارہ کیوں بول رہا ہے ایسا سوال, یہ دوبارہ کیوں پوچھ رہا ہے. کہا میں تو میں وہاں جا رہا تھا, میں مجھے اسٹیشن پہ اترنا تھا اور پھر میں یہ اس کے بعد یہ کیسے ہوا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پھر انہوں نے اس ڈیوٹی کو بلایا جو بک ڈسٹریبیوشن کر رہا تھا, بھائی اس کو سمجھایا کیا ہو گیا, دیکھو کیا ہو گیا. تو بھکت نے کہا بھائی آپ بھی تو پوچھ رہے تھے میں کون ہوں, میں کون ہوں, میں نے بتا دیا کون, اس لیے آپ یہاں پر آ رہے کون ہوں. تو پھر ڈیوٹی نے اس کو بتایا. تو پھر یہ ڈسکشن, تو بھکت کو سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ کچھ نہ وہ جو ہے سائیکولوجیکل بیسفٹ ہوا ہے اس کے ساتھ. تو بھکت نے پھر سے اس کو ایکسپلین کیا. تو آف کورس ہی وینٹ بیک ہوم لیکن پھر سے لیکن وہ بھکتوں کے ٹچ میں رہا. سو ہی بیکیم اے ڈیووٹی. تو بھکت ہماری جیون میں آئیڈینٹی کرائسس کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ بتاتے ہیں بھگوت گیتا پڑھیے جانیے کہ آپ کون ہیں, شریمد بھاگوتم سنیے جانیے کہ آپ کون ہیں, شری پربھوپاد جی کے سمپرک میں آئیے جانیے کہ آپ کون ہیں. تو بھکت ہیں جو کہ ہم کو ہماری آئیڈینٹی کرائسس سے نکالتے ہیں. یہ جو استتو کا جو یہ کشمکش ہے, یہ جو جدوجہد ہے, اس سے نکالتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, پانچ منٹ ہے, میں یہ پہ وراؤ دوں گا. کسی کوئی سوال ہے؟ یس ماتا جی, آتما اور چیتنا میں کیا ڈفرنس ہے؟ جیسے کہ سورج اور سورج کی روشنی ہے نا, روپا جی ایگزامپل دیتے ہیں, سورج اور سورج کی روشنی, سورج کی روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ سورج سے آ رہی ہے. तो सूरज की रोशनी सूरज का एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसे एक विशेषता है। और ऐसा कभी समय नहीं था कि सूरज अपनी किरणों के बिना, ऐसा कोई समय नहीं था, है ना। उसी तरह से आत्मा की विशेषता है चेतना, एक उसकी ऐसी क्वालिटी है जो कि उससे अलग नहीं की जा सकती। ऐसा कभी भी समय में नहीं होगा कि आत्मा है और बिना चेतना के। तो आत्मा जो चेतना है वो आत्मा की इंटरनल क्वालिटी है, जैसे भगवान की अंतरंग शक्ति है ना, उसी तरह से आत्मा की अंतरंग शक्ति है चेतना, इनसेपरेबल पार्ट।
चेतना और चैतन्य में क्या, चेतना और चैतन्य क्या,
चेतना और चेतन, आत्मा है वो चेतन है, ठीक है, चेतना उसकी एक क्वालिटी है, एक ऐसी क्वालिटी जो कि सेपरेट नहीं की जा सकती उससे, इंटरनल क्वालिटी है उसकी। चेतन आत्मा है, आत्मा जो है वो चेतन है, ठीक है, जो चेतना है उसकी क्वालिटी, उस क्वालिटी की वजह से वो चेतन है। जैसे हम बोलते हैं ना कृष्णा इज सुप्रीम पोटेंट, लेकिन पोटेंट होने का मतलब है ही हैज पोटेंसी, बिना पोटेंसी के गॉड इज इम्पोर्टेंट, लेकिन भगवान तो कभी इंपोर्टेंट होते नहीं। ये तो एक तो ये तो सिद्धांत में गड़बड़ हो गई ना कि भगवान इंपोर्टेंट है। सो गॉड इज पोटेंट, सो नेचुरली मींस उनके पास पोटेंसी है, परास्त शक्ति विविधाई वो श्रूयते, उनकी शक्तियां विविध प्रकार की हैं। तो ऐसा कोई समय नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण थे लेकिन शक्तियां नहीं थी, कृष्ण हमेशा से थे और शक्तियां भी उनके साथ हमेशा ही थी, है ना। उसी तरह से आत्मा जो है वो चेतन है, उसकी इंटरनल क्वालिटी है, उसकी शक्ति है ये चेतना, तो उसे एक भी है उससे अलग भी है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं स्पिरिट सोल इज कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस, हाँ चेतना, तो चेतना से अभिन्न भी है ना। मीन ये वाला एरिया जो है ये आत्मा का है और इसके बाहर की जो बाउंड्री है यहाँ पर, यहाँ से चेतना है, इंटरनल क्वालिटी उसकी, इंट्रिंसिक क्वालिटी। जैसे सन रेज जो है ये ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर कि सूरज जो है बिना किरणों के है ना, उसी तरह से चेतना जो है वो आत्मा की इंटरनल क्वालिटी, इनसेपरेबल, अलग नहीं हो सकती उससे, ये इंटरनल पोटेंसी है ये। ओके यहाँ प्रभु जी फिर माता जी, यस।
हरे कृष्ण प्रभु,
हरे कृष्ण।
जो आपने ज्योतिष की बात बताई, नील पहनता है कोई, पन्ना पहन लेता है कोई, लोही की अंगूठी पहन लेता है कोई, जब भी करवाता है तो उनके ऊपर कुछ समस्याएं भी उनकी हल हो जाती है, कुछ उनको विश्वास भी जब होता है, ये क्या कारण चलता है।
एक्चुअली क्या होता है कि ना, ये आपके प्रारब्ध में लिखा था कि आप 3 साल दुख पाने के बाद, यू नो ये बहुत ही प्रकृति ये अरेंजमेंट करती है, 3 साल दुख पाने के बाद आप एक व्यक्ति से मिलेंगे जो कि कहेगा अरे हमारे स्वामी जी हैं उनसे मिलो, कष्टों को दूर कर देते हैं वो। तो ये भी आपके प्रारब्धों में लिखा है कि इतने समय आपको ये वाला कष्ट भोगना है, ठीक है, फिर आपको कुछ फाइनेंशियल आपको लॉस भोगना पड़ेगा। अब भले ही कोई अगर पन्ना खरीदता है उसमें 40,000 का सोना है, साथ में 30,000 का पन्ना है, फाइनेंशियल हुआ ना, तो ये भी सब उसका प्रारब्ध ही चल रहा है असल में। अब देखिए ना, एक पत्थर भला आपके कर्मों के साथ कैसे खेलेगा, इम्पॉसिबल है एक्चुअली। तो ये वास्तव में एक छलावा है, आपको लगता है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा ना, हम ये पत्थर पहन लेंगे तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। खाओ कर्मों की ग्रंथि को भला, ये पत्थर ये निर्जीव चीज भला कैसे तोड़ेगी, तोड़ ही नहीं सकती। तो वास्तव में एस्ट्रोलॉजर से मिलना, ठीक है, और फिर एक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर से मिलना, एक एस्ट्रोलॉजर से मिले वो काम नहीं किया, उसने बताया था सब उल्टा बताया गलत, उसको ये नहीं पता, कह रहा था जी आपकी शादी अगले साल हो जाएगी, मैं पहले से शादी चला हूँ, बेकार एस्ट्रोलॉजर, हम नहीं जा रहे हो, कोई ढंग वाला एस्ट्रोलॉजर बताओ जी। अरे आप ना वहाँ चले, कनॉट प्लेस में है ज्योतिषाचार्य महापंडित सच एंड सच पर्सन, वहाँ उनके पास जाएंगे जी, ठीक है। तो ये सब भी उनके प्रारब्धों में, ये एंग्जाइटी, ये फाइनेंशियल लॉस, और उसके बाद फिर एक एस्ट्रोलॉजर से मिलना, है ना, और फिर अंगूठी पहन ली ना उसने, उसको लगता है कि इस अंगूठी से सब कुछ बना है। एक्चुअली हमारे अहंकार की वजह से होता है सारा संसार में जो कष्ट पा रहे हैं, हम अहंकार की वजह से। मैं ऐसे कई डिवोटीज को जानता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली उनका अभी शनि की महादशा चल रही है और वो इतने खुश नजर आते हैं कि जिसका शुक्र भी चल रहा है ना उससे ज्यादा खुश तो भक्त नजर आते हैं। जानते क्यों? शुक्र जो है वीनस इज वेरी गुड प्लैनेट फॉर हैप्पीनेस, यू नो, जिसको जैसे कि फिल्म स्टार इंडस्ट्रीज होते हैं इनका वीनस बड़ा स्ट्रांग होता है शुक्र, तो या फिर बुध, बड़े बड़े स्पीच देने वाले इंटेलेक्चुअल लोग, है ना, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनका शुक्र चल रहा है, वेरी गुड एस्ट्रोलॉजिकली, वेरी गुड पीरियड, लेकिन वो दुखी रहते हैं, अरे क्या यार वो तो मिला नहीं, अमेरिका जाना था यार अमेरिका जा नहीं पाया, यहाँ पर लंदन में आके फंस गया मैं, क्या यार वो दुखी है, शुक्र चल रहा है उसका, क्या अरे क्या पति मिल गया, सीधा साधा मैं भक्त है बताए सारा क्या ना मान लेता मेरा, मुझको चाहे था एक तड़कता बढ़ता स्पाइसी सा हस्बैंड, क्या उसको सब कुछ अच्छा मिला है, अच्छा पति मिल गया उसको, अच्छा घरवार मिल गया, लेकिन क्योंकि मित्ते अहंकार है फंसी हुई आत्मा ना, तो वो दुखी रहेगी। और उसी प्रकार से हम भक्तों को देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली उनकी क्या है साढ़े साथी चल रही है, नहीं क्या वैराग्य आया रोज ही बड़ा अच्छा लग रहा है भक्ति में ना, सब छूट छाट गया भक्तों के साथ, बड़ा खुश हूं मैं। तो हो गई एस्ट्रोलॉजी का सारी, तो इसलिए जो है ना ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये सिर्फ एक कार्मिक कोडिंग है, ये सिर्फ एक भाषा है कर्मों को पढ़ने की, भाषा से थोड़ी ना कुछ हो रहा है। अब ये ज्ञान मेरे को हिंदी से थोड़ी ना मिल रहा है, ये मेरे को श्रीमद भागवतम से मिल रहा है, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से मिल रहा है मुझे दिव्य ज्ञान। भाषा तो सिर्फ एक मीडियम है ना, उसी तरह से जो लैंग्वेज है ये जो एस्ट्रोलॉजी जो है ना ये सिर्फ एक लैंग्वेज है। अगर किसी को बताना हो भाई आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन का टाइम आने वाला है तो बोलेंगे आपका शनि चल रहा है, ठीक है। अगर किसी को बताना भाई आपका डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है तो बोलेंगे आपका केतु है। तो ये शनि केतु ये सिर्फ एक लैंग्वेज है कर्मों को पढ़ने की। ये जो पत्थर वत्थर पहनते हैं ये बड़ा पत्थर से बना, आपका प्रारब्ध का है चेंज हो जाएगा, है ना। तो वास्तव में हम हमारे सुखों और दुखों का जो मूल कारण है हमारा अहंकार, हमारी मिस आइडेंटिफिकेशन है, हम अपने आप को वो मान रहे हैं जो कि हम नहीं है, इस वजह से दुखी हैं हम लोग वास्तव में। तो इसीलिए किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलना जो खुद कर्मों के चक्कर में फंसा हुआ है, वो बता आपके कर्मों के चक्कर को कैसे काट सकता है, ही कैन नॉट, वो तो खुद फंसा हुआ है, उसके खुद के हाथ बंधे हुए हैं, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। और प्रभु मेरे हाथ खोल दो, कैसे खोलो, मेरे खुद के हाथ बंधे हुए हैं, भक्तों के हाथ खुले हुए हैं, वो आपके हाथ खोल सकते हैं, वो बताएंगे अरे प्रभु जी अपने आपको आप इंडियन समझते हो, हिंदू समझते हो, पति समझते हो, पत्नी समझते हो, भाई समझते हो, बहन समझते हो, चाचा ताऊ मामा मामी, अरे ये सब हो ही नहीं, स्पिरिट सोल एक खूबसूरत आत्मा जो कि सबसे खूबसूरत भगवान की अंश है, उनकी सेवा के लिए बनी है, दैट्स इट, दिस इज आवर आइडेंटिटी। सपने भी जी रहे हो यार, कम टिटिटिटिंग टिटिटिटिंग कम। इसलिए जो है ये पत्थर वत्थर जो है इनसे कुछ नहीं बदलता। मैंने ऐसे से मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है। तो इसलिए ये पत्थर और ये प्लैनेट्स ये हमारी खुशी और दुखों का कारण नहीं है, जो कि लोगों को लगता है ये हमारे सुख दुखों का कारण नहीं है। हम लोग कृष्ण से अलग हो गए ना, इसीलिए यहाँ दुख पा रहे हैं। कृष्ण के साथ जुड़ जाएंगे फिर आपका चाहे शनि चले केतु चले विल बी हैप्पी। प्रभुपाद जी ने जब ये जो इस्कॉन मूवमेंट है ना ये अपनी पीक पे गई है, उस समय एस्ट्रोलॉजिकली प्रभुपाद जी का केतु चल रहा था। केतु जो है ना बहुत बुरा हाल मचाता है, मतलब व्यक्ति का जो है ऐसी तैसी कर देता है। प्रभुपाद जी का ये आध्यात्मिक संस्था कहाँ से कहाँ ले गए, क्योंकि जो आचार्य हैं शुद्ध भक्त हैं क्या प्लैनेट्स क्या करेंगे, वो तो चरणों की धूली चाहते हैं ऐसे शुद्ध भक्तों की, क्या कर लेंगे। तो इसीलिए जो है ऐसे पावरफुल आचार्य इनकी शरण में जाना चाहिए, भक्तों की शरण में जाना चाहिए। इन प्लैनेट्स की तो बात क्या करें, इवन रावण जो है ना इन प्लैनेट्स के ऊपर अपने के ऊपर सर रख के जाता था, इनके सर के ऊपर पावर रख के जो है वो अपने सिंहासन बैठता, ये इन सबकी हालत थी। तो जब राक्षस तब ये कर सकता है तो भला, तो ऑफकोर्स उसका थोड़ा बुरा हाल हुआ था तब, तो उनमें से शनि इज प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, तो वो जो है उल्टे लेटे हुए थे, कहते ए शनि पलट, मैं ना यहां धड़ पे पांव रखता हूं फिर ऊपर बैठता हूं, तू ऐसे उल्टा क्यों हुआ है। शनि ने कहा मेरी दृष्टि जिससे पड़ जाती है ना उसका फिर दिन बुरे शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं उल्टा लेटा हूं। अरे अरे चल चल पलट, तो पलट गए वो। तो उससे भी जो है उनका बुरा समय शुरू होता है। ऑफकोर्स रावण का जो पतन का कारण और भी थे, अगर एक लीला पॉइंट ऑफ व्यू से फिलोसफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने बहुत कईयों के श्राप दिए थे, उन्होंने नल कुंवर का लिया था श्राप, रंभा का लिया था और वेदवती का लिया था, कईयों के श्राप दिए थे, तो इसलिए भी उनका बुरा हाल हुआ, हमारे इन द सेंस उनको जो है मृत्यु को का सामना करना पड़ा। बट द पॉइंट इज दैट कि जो ये प्लैनेट्स हैं तो निर्बल है वास्तव में, ये तो सिर्फ एक मीडियम है, एक लैंग्वेज है बस, ठीक है। हाँ माते या कौन सा बात, राइट, यस चेत, हाँ हाँ, तो हाँ मतलब क्योंकि ना हम इसको पूरा अगर आत्मा लेके चले यानी आत्मा और चेतना तो हाँ ये कहेंगे आत्मा अशुद्ध हो गई। लेकिन एक्चुअली जब आत्मा जब इस मिथ्य अहंकार की कवरिंग के साथ आइडेंटिफाई कर रही है ना, तो ये जो कवर्ड पार्ट है इसको सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। आत्मा को कष्ट नहीं भोगने पड़ते क्यों? पर क्योंकि ये चेतना है ना, ये जो अहंकार है ये चेतन हुआ ना, क्योंकि ये चेतना के संपर्क में आया हुआ है, तो इस ये जो मिस आइडेंटिफाइड एरिया है कि मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसको भोगने पड़ते हैं कष्ट। आत्मा जो है इससे अलग है, ये कवर्ड एरिया जो है आत्मा चेतना का सिर्फ ये, इसे कहते हैं अनावृति शब्दांत। ये जो कवरिंग है ये हटनी है सर, ये कवरिंग हट जाएगी और सोल जान लेगी कि हे राया। इसे कहते हैं बी इंट्रोस्पेक्टिव नॉट एक्सट्रोस्पेक्टिव। एक्सट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये इसके साथ आइडेंटिफाई करना, इंट्रोस्पेक्टिव मतलब यहाँ आइडेंटिफाई करना मैं आत्मा हूं, मैं ये अहंकार नहीं हूं, मैं ये साइंटिफिकेशन नहीं हूं, मैं तो ये हूं, मैं आत्मा हूं, अंश हूं मैं भगवान का। तो इसके साथ इसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन नॉट एक्सट्रोस्पेक्शन, ये एक्सट्रोस्पेक्शन है। तो इससे फिर ये मिस आइडेंटिफिकेशन होता है इस एक्सट्रोस्पेक्शन के कारण। और किसी कोई प्रश्न है? यहीं पे समाप्त करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री श्री राधा राधिकरमन की जय, श्री जगन्नाथ देव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। ताय गौर प्रेमानंद की जय।